ओम शांति। गोपी वल्लभ के प्यार में मस्त रहने वाली मस्तानी गोपी का आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान है। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ने ये लौकिक और अलौकिक दोनों ही जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में लिया है और फिर अफ्रीका से आप लंदन गए। हम कहेंगे पिछले 40 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 25 वर्षों से या यूं कहें 30 से भी अधिक वर्षों से आप बाबा के घर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और 25 से भी अधिक वर्षों से आप जो इंटरनेशनल यूथ फोरम है उसकी कमान संभाले हुए हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है, अंतर्राष्ट्रीय टीचर है, सदा ही पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं और आपके भ्रमण का एक ही उद्देश्य होता है पूरी मानवता में अध्यात्म के प्रति आकर्षण पैदा करना और मानवता के अंदर जो हमारे जीवन के आंतरिक मूल्य है उनको स्थापित करना। और इसलिए समय समय पर वैरायटी प्लेटफॉर्म्स पर, वो हो सकता है गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हो, प्राइवेट सेक्टर के प्लेटफॉर्म्स हो, कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म्स हो, वैरायटी प्लेटफॉर्म्स पर स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप सबको मोटिवेट करते रहते हैं और साथ ही साथ ज्ञान की बहुत गहरी स्टडी से, ज्ञान के बहुत गहरे मनन चिंतन से ब्राह्मण परिवार को भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन देते हैं। चूंकि दादी जानकी के अंग संग रहने का आपको बहुत सौभाग्य मिला है तो उनकी शिक्षाओं से भी, उनके अनुभवों से भी आपने बहुत कुछ सीखा है और वो सब बातें आप अपने स्पीच में इंक्लूड करते हैं बहुत प्रैक्टिकल। तो आज हम उन्हीं सभी बातों का लाभ लेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करें या जिसको कहें कि कैसे कार्मिक सेटलमेंट करें। सुनते हैं आदरणीय दीदी को।
ओम शांति। जब ऐसा कोई परिचय भी देते हैं मुझे ऐसे लगता है कि किसी और के बारे में बता रहे हैं। मैं क्या कहूंगी, हमारा परिवार पहले तो 1976 में बाबा के पास आए और मेरी मम्मी पहले समर्पित हुई, मीन्स पूरी डेडिकेट, पूरा घर लिया। 11 लोग थे घर में, बहुत बड़ा परिवार था। तो अकेली उसने सारा भंडारा ले लिया हाथ में और जैसे भंडारा ले लिया हाथ में, किचन ले लिया एक एक उसके बाद, और सारा टाइम खाना बाबा के योग में बनाती थी। फिर मेरे लौकिक पिताजी ज्ञान में आए, फिर चाचा जी, चाची, नानी, नाना और सभी पूरी पलटन ज्ञान में आए करके। जब दिमाग नहीं काम करता है ना तो पेट से जाना है रास्ता दूसरा है। इसके लिए बहुत कहानियां हैं दादी जानकी जी। मैं कहूंगी कि सारे वेस्ट की जो सर्विस की वृद्धि हुई है वो ब्रह्मा भोजन के महत्व के आधार से हुई है। दादी जी जब पहली बार, मैं टॉपिक तो उठाऊंगी लेकिन ये लहर जो शुरू हुई हिस्ट्री की, दादी जी जब पहली बार आए थे जून 1974 में लंदन में। और वैसे तो सेवाएं 71 से आरंभ हुई थी लंदन में, अक्टूबर 71। यहां से एक 5 की पार्टी निकली थी और वे लोग न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो जयंती दीदी के जो लौकिक पिताजी हैं मुरली दादा, उन्होंने फिर टेलीग्राम भेजा कि आप एक वीक के लिए लंदन आओ। तो उस ग्रुप में कौन था? रमेश भाई जी, रोजी बेन, शीलेंद्र दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई, ठीक है। और जैसे वो पहुंचे अक्टूबर 71 में, वो एक वीक, एक 7-8 दिन ही ठहरे और इतनी सेवा की वृद्धि हुई। आपने शायद ये नाम सुना होगा ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने ये पूरा हैंडओवर का मना मदद किया इंडिपेंडेंस में। तो उसके द्वारा भी उसके साथ भी एक प्रोग्राम हुआ था, माने बहुत बड़े हाई लेवल के प्रोग्राम हुए थे एक वीक में, जैसे बाबा कुछ करा रहा था। तो फिर जब उनका जाने का समय आया तो जयंती बहन ने पूछा जगदीश भाई को कि भाई साहब, हम सेंटर खोल सकते हैं लंदन में? एक्चुअली जगदीश भाई का संकल्प था कि यहाँ इतनी अच्छी सेवाएं हो रही है, सेंटर होना चाहिए। तो फिर जगदीश भाई ने राय दिया कि आप जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि जयंती दीदी के माताजी जो रजनी बहन थी, तो उन्होंने तो बहुत अच्छी माताओं का ग्रुप तैयार किया था और ऐसे 3-4 भाई थे भी सपोर्ट देने वाले। तो 12 का ग्रुप निकला, जिन्होंने लेटर लिखा, साइन किया, मधुबन भेजा कि हम सेंटर खोलना चाहते हैं, आप टीचर भेजो, ठीक है। तो वापसी आके समय फिर मधुबन ने टेलीग्राम भेजा कि डॉक्टर निर्मला बैठे। तो जैसे न्यूयॉर्क से वापस आए तो दीदी लंदन में रह गई। मैं समझती हूँ 8 मास के ऊपर होगा शायद। और लंदन की धरनी काफी टफ ग्राउंड है। तो फिर उसके बाद दीदी को फिर एशिया में भेजा गया था, हांगकांग उस जगह पे। और फिर उसके बाद मोहिनी दीदी आई थी, न्यूयॉर्क की मोहिनी, नहीं रतन मोहिनी दादी जी, वो 1 साल 12-13 मास तक रहे थे। और उन्होंने तो खास हिंदी सेवा शुरू करवाई दूसरे शहर में, जो है ना लेस्टर करके, बहुत वहां जैसे गुजराती भाई बहने हैं तो वहां उन्होंने बहुत अच्छा जमाया। और ट्रैवलिंग करती रहती थी लंदन लेस्टर के बीच में। फिर यहां पे भारत में सेवाओं की वृद्धि हो रही थी और दादी तो टीचर्स की ट्रेनिंग संभालती थी, बहुत कुछ कर रही थी। तो फिर बुलावा आया कि आप भारत वापस आओ, यहां बहुत सेवाएं है। तो फिर रतन मोहिनी दादी चली गई, फिर मोहिनी दीदी आई वो भी 6 मास में चली गई, फिर न्यूयॉर्क। तो फिर लास्ट में जाकर के जयंती बहन ने बहुत ही डिटर्मिंड, माना दृढ़ संकल्प करके बाबा को बोला, मुझे दादी जानकी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का तो बहुत पुराना संबंध था पुणे से। दादी ने ही जयंती दीदी को कोर्स कराया और संभाला पाला उनको, तो बहुत पुराना कनेक्शन था। तो बड़ों ने सब आशीर्वाद दिया, दादी, बड़ी दादी, दीदी और अव्यक्त बाप दादा ने दादी जानकी को बोला, आप वहां जाकर के एक मिनी मधुबन का मॉडल बनाना। तो दादी जी फिर आ गई और दादी जी फिर 4 साल रही लंदन में, क्योंकि रेजिडेंस परमिट चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस परमिट चाहिए, तो आप 4 साल के लिए आप देश के बाहर नहीं जा सकते। तो वो तो मधु बनाने का भी त्याग किया दादी ने, ठीक है। एक त्याग तो जो सेवा की वृद्धि हो रही थी यहां पे, क्लास में 200-300 होते थे, वो त्याग किया, सब कुछ, सीट पोजीशन सब कुछ त्याग किया लंदन में है। फिर 4 साल वहां बैठी, वो त्याग किया, मधुबन नहीं आई। और फिर वहां पे लंदन में बैठ करके दादी ने पूरा किचन ले लिया हाथ। बहुत सालों से दादी किसी को किचन में नहीं आने देती थी खाना पकाने के लिए, हम जब हॉलिडे के लिए जाते थे तो हम दादी के हाथ के खाना खाते थे, जाते थे टूर पे, आते थे सेंटर पे, गरम सब्जी, रोटी, थोड़ा दाल चावल ले लेते थे। लेकिन दादी ने ब्रह्मा भोजन का बहुत ही महत्व रखा, शुद्ध भोजन, शुद्ध अन्न मन को पवित्र बनाता है। और जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने इतना भोग का महत्व, ब्रह्मा भोजन का महत्व अपनाया है कि मैं कहूंगी कि आज दिन तक जो सारे विदेश में सेंटर्स, भोग का नियम, ब्रह्मा भोजन का नियम एक्यूरेट चलता है। इसीलिए भंडारी भरपूर रहती है। और विदेश की भंडारी से, एक जमाना था जो यज्ञ में इतना आता था विदेश से, जो 6 मास पूरा यज्ञ चलता था वो डोनेशन से, फुल सीजन में, आप सोचो। तो ये पता नहीं ये ट्रैक मैंने क्यों पकड़ा, लेकिन हमारी ब्राह्मण जीवन में उदासी आती है, दुख आता है, दर्द हो महसूस करते हैं, फ्लक्चुएशन महसूस करते हैं, एक ही कारण होता है। एक्चुअली वास्तव में 2 कारण होता है। एक है विकर्मों का बोझ पूरा नहीं हुआ है, दूसरा है कहीं ना कहीं छोटी बातों में श्रीमत का उल्लंघन है, और खास करके खान पान में, क्योंकि भारत देश का तो खान पान बहुत अच्छा है ना। बाहर जाओ ना, चटपटी चटपटी खाना मिलता है। बॉम्बे में रहेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल है सभी के लिए, ये वड़ा पाव मिलता है, वो मिलता है। मुझे याद है एक बहन आई थी, ये मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बॉम्बे की थी, लेकिन दीदी मैं अपना वड़ा पाव नहीं छोड़ सकती हूँ, ये बस यहाँ बाहर है ना, इतना अच्छा बनाते, प्यार से बनाते। और मुझे याद है गुलजार दादी, वो गोलगप्पे की कहानी सुनाती थी ना, कि एक माता जी थी, बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में दाखिल किया था, ब्राह्मण थी और उसको हर रोज खाना मिलता था, लेकिन लास्ट में उसकी बहू आई थी और बहू ने उसको पूछा कि आपको क्या खाना है, तो उसको अंदर से गोलगप्पे याद आया। क्या हुआ, वो बहू बाहर जाकर के गोलगप्पे खरीद करके लेके आई, इतने सालों से ज्ञान में है और अंतिम समय में क्या खाना खाया, और वो बाहर का, तो फिर नतीजा क्या, गड़ी कहां लेकर के गई उसको, पूरी कमाई चट वो लास्ट सेकंड में। तो इसीलिए शुद्ध भोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन होनी चाहिए इस बात की, ये फाउंडेशन है। भोजन में शुद्धता नहीं है तो जो भोजन जिसके हाथ से आप खा रहे हो ना, उसका भी कर्म बंधन वो आपको भोगना पड़ेगा। आप इतनी गहरी फिलॉसफी पता नहीं होते हैं, लेकिन होता है ऐसा। इसीलिए बहुत संभाल करके, बड़ी दादी ऑलवेज कहती थी, भाग्यवान वो है जो खुद अपने हाथों से खाना बना करके बाबा को भोग लगा करके अपने को खिलाता है। तो इसीलिए जो मर्यादा इस श्रीमद् बाबा ने दी है हमको, हमारी मन की पवित्रता के लिए दिया है, ताकि हमारी मन की स्थिति स्टेबल रहे, प्योर रहे, शुद्ध रहे। और जितनी शुद्धता होती है मन में, उतना मन मनाभव रहते हैं, जितना मन मनाभव रहते हैं उतनी शक्तियां प्राप्त होती है, ज्ञान धारण होता है। एक एनवायरनमेंट चाहिए क्लिनलीनेस का, ज्ञान का धारण करने के लिए। तो इसीलिए मर्यादा ही श्रीमत है इसके लिए। अभी जो बाबा की अभी की अव्यक्त वाणी जो चली, बाबा ने कितना प्यूरिटी के ऊपर, पवित्रता के ऊपर जोर दिया, ठीक है, कहां पे वीकनेस है। और बाबा ने ये भी बताया कि वीकनेस किस बात की, जो फुल स्टॉप न लगाते हैं, कॉमा या एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, आश्चर्यवंत जो होता है ना वो लगाते हैं। तो आजकल साक्षी होकर के देखा जाए, मौत का बाजार तो बहुत गर्म है, कर्म के हिसाब किताब चुकते होने की बहुत फास्ट स्पीड में वो मशीनरी चल रही है, और सभी इधर उधर देख करके, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना कितना होता है। अभी इसमें आपका सारा टाइम क्या क्यों में चला जाएगा तो बिंदु रूप कब बनेंगे। तो इसीलिए मुझे आज आपको एक बाबा ने एक अव्यक्त मुरली दिसंबर 84 में चलाई थी। ये भोपाल में जब वो हुआ था ना, वो गैस का एक्सप्लोजन हुआ था ना, बहुत हजारों लोग मर गए थे। हम तो लंदन से अफ्रीका से प्लेन भर भर के सामान भेजते थे, माना जो कपड़े बपड़े वो खाना बाना बहुत कुछ मुझे याद है। तो खास बाबा ने एक मुरली चलाई थी, कर्म के हिसाब किताब कैसे चुकतू होते हैं इस समय में। तो मैंने उस मुरली, मुझे बहुत टच हुई, और वो मुरली मैं बहुत यहां दिल में रखती हूं, तो मैंने इससे नोट्स लिए। तो मैं आज थोड़े समय के लिए मैं थोड़ा ये बताऊंगी आपको कि बाबा ने क्या बताया है, ताकि यहां पे वर्तमान समय अनुसार कोई भी परिस्थिति या सिचुएशन में क्वेश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होना चाहिए। जब कुछ बात समझ में आती है ना, तभी हम साक्षी शांत चित बाबा के साथ बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। जब कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तभी प्रश्न उठते, चिंता होती है, शायद मुझे ना हो जाए। बाहर की दुनिया में केवल दो एनर्जीज है, भय और चिंता, वरी एंड फियर सारा टाइम, और हम यहां बेफिक्र बादशाह बैठे, बेफिक्र बादशाह बैठे हैं, नहीं इतना उमंग से नहीं बोल रहे, बेफिक्र बादशाह बैठे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं कई कई हाथ उठा रहे और लोग ठंडे बैठे हैं, हमें समझ गई, मैं समझ गई, कुछ चिंता पकड़ के बैठे होंगे, नो प्रॉब्लम, अभी एक दो दिन बाकी है भट्टी के, टाइम है उसको छोड़ने का। लेकिन हमारे में भाई चिंता होंगी तो हम औरों को चिंता मुक्त कैसे बनाएंगे। एंजल्स, आप सभी एंजल्स हो, बाबा के एंजल्स हो। तो बाबा ने उस टाइम पे 84 में बताया कि अभी अकाले मृत्यु का सीजन शुरू हुआ है, बहुत फास्ट गति से वो सीजन शुरू हुआ है। जैसे तूफान आते हैं ना, जल्दी जल्दी अपना काम करके सब कुछ नाश करके फिर चली जाती है तूफान, वैसे ही सब कुछ अचानक और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। और बाबा ने ये सीक्रेट बताई थी कि भारत में जो परिवर्तन के लिए दो चीजें निमित्त बनेंगी, एक है सिविल वॉर, दूसरा है नेचुरल कैलामिटीज। ये भारत के लिए खास बाबा ने बताया था कि खास भारत के लिए सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटी निमित्त बनेंगी परिवर्तन ले आने में, बाकी विदेश में तो और चीजें होंगी, लेकिन ये खास बाबा ने भारत के लिए बताया था। माना विदेश में तो परिवर्तन का रूप कुछ और चीज निमित्त बनेंगी। तो किसी ने बाबा को पूछा था कि क्यों इतने सारी आत्माओं एक टाइम में चली जाती है, मरती है, इतने सारे हजारों लोग एक टाइम पे क्यों। तो बाबा ने ये बात बताई कि देखो, द्वापर से लेकर के अभी तक कितने कर्म किए हैं आत्माएं, विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, पुण्य कर्म भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर वर्तमान समय अनुसार विकर्म का बोझ ज्यादा है। अभी लॉ क्या कहता है, चुक तो नहीं होगा तो अगले जन्म में चुक तो करना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा, विकर्मों का भोगना पड़ेगा या पुण्य कर्म की प्राप्ति भी मिलेगी, दोनों का होगा, ठीक है। लेकिन ये अंतिम जन्म है, जो ब्राह्मण आत्माएं होती है ना, वो भी टाइम के क्लॉक्स होते हैं पूरे विश्व के लिए। हमारा परिवर्तन विश्व का परिवर्तन ले आती है। तो हमारे लिए एक अंतिम जन्म है, लास्ट अंतिम समय है। तो अकाउंट्स तो यहां ही सेटल होने हैं ना। तो इस कारण से बाबा ने बताया कि ये फाइनल पीरियड में ये जो भी पुराने विकर्मों का बोझा है, खाता बचा है आत्माओं का, वो बहुत ही जैसे क्विक डेथ क्विक बर्थ में चुक्त होते हैं। क्विक बर्थ क्विक डेथ, क्योंकि ये दो घड़ी होती है आत्मा के जीवन में, जहां पर विकर्म वो क्या कहते हैं पश्चाताप होता है गर्भ में। बाबा कहते हैं ना गर्भ के जेल में आत्मा चिल्लाती है, सफरिंग होता है ना, चिल्लाते नहीं बाबा मैं नहीं विकर्म नहीं करूंगी नहीं करूंगा, फिर बाहर आकर के वही धंधा शुरू। हाँ, और फिर वो चलो बीच बीच में भोगना पड़ता है, और फिर लास्ट में आपने कैसे अपनी जीवन जी है जिया है उसके आधार से आपकी अंतिम गति होंगी। तो लास्ट में आपका मौत वैसे ही होगा। तो ये दो जैसे क्या कहेंगे नेचर प्रकृति के नेचुरल मैकेनिज्म्स है कर्म के हिसाब किताब को जल्दी चुप्त कराने के लिए, उसका बोझ कम करने के लिए। तो इस कारण से ऐसे तूफान बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है, और हजारे आत्माओं को लेके चली जाएंगी। बाबा ने ये बताया ना डेथ पेनफुल होता है और गर्भ जेल का अनुभव भी दुखी होता है आत्माओं को, वहां ही बहुत सार कर्म के हिसाब किताब चुप्त होते हैं। और बाबा ने ये बताया कि जैसे चीटिया मच्छर कीटाणु जो होते हैं ना, तो उनके लिए जो बार बार ये इन्वेंशन करते हैं, ये क्या स्प्रे बनाते हैं वो बनाते हैं, बहुत सारा केमिकल्स वगैरह, जो एक धक से कीटाणु और मच्छर और चीटिया खत्म हो जाए, वैसे ही आत्मा की हालत होंगी। ऐसी परिस्थिति आएंगी जो मनुष्य आत्मा और चीटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, माना ऐसे यूं ही जल्दी फटाफट। तो ये बाबा ने बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया था उस समय। तो अकाले मृत्यु का तूफान वो फिर समय प्रति समय आता रहेगा। अभी अंत में तो सभी को धर्मराजपुरी में तो जाना है। धर्मराजपुरी कहाँ है? सोच समझ के जवाब देना। ये अलग है, कर्म का हिसाब किताब जो चुकतु होता है अभी इस साकारी दुनिया में, इसकी परिभाषा बाबा ने दी है। लेकिन अंतिम समय में लास्ट में जब धर्मराजपुरी में जाना है वो सूक्ष्म है। देखो लास्ट में जब बहुत लोग मरते हैं तो कई लोग का जो क्या कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट में हमको ऐसे लगता है कि हमारे सामने सारी हमारी लाइफ की हिस्ट्री हमारे सामने आती है। तो ये क्या है, सूक्ष्म है ना। तो ये व्यक्तिगत रूप में हर एक को अपना अपना धर्मराज के सामने जो सेटल करना है, ये व्यक्तिगत रूप में कर्म का हिसाब किताब, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय आत्माओं के पास तो बहुत वैरायटी कार्मिक अकाउंट है, शरीर के साथ कार्मिक अकाउंट है, संबंध संपर्क के साथ, अपने चित्त के साथ कार्मिक अकाउंट है, मन के साथ है, बुद्धि के साथ है, खरे कर्मिंद्र के साथ अकाउंट है, वैरायटी है। लेकिन इस वैरायटी में बाबा ने तीन प्रकार अंडरलाइन किए कि तीन स्पेशल प्रकार के कर्म के हिसाब किताब है। पहला है जो खुद आत्मा अपने शरीर द्वारा भोगती है, खुद का अकाउंट खुद के साथ जो बीमारी के कारण भोगती है, ठीक है, ये पहला काउंट है। दूसरा है कि किसी का क्या कहेंगे, दिमाग वो डल बन जाता है ना, बुद्धि डल हो जाती है, दिमाग डल हो जाता है, क्योंकि एक प्रभाव होता है। बाबा ने तो उस समय शब्द यूज किया था इविल स्पिरिट, कुछ ऐसी आत्माओं का प्रभाव होता है, तो दिमाग बुद्धि डल हो जाती है, सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लगते हैं हम चलना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रभाव में है, ठीक काम नहीं करता है। ये भी एक सजा है, ये एक सजा होती है। और इसके साथ साथ संबंध संपर्क में दुख महसूस करना, ये भी एक सजा होती है। नहीं, कई बार हम ब्राह्मण जीवन में देखते हैं, अरे ये इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्यों किया? अरे आप थोड़ा ठहरो, ये प्रश्न पूछने से पहले ये ब्राह्मण आत्मा तो निमित्त बना है, इसके साथ तो अकाउंट नहीं है। नहीं, बाबा ने एक बारी बताया था, ब्राह्मण आत्माएं एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए निमित्त बनता है कर्म का हिसाब किताब चुप्त करने के लिए। तो मैं थैंक्स मानू ना कि कोई ब्राह्मण मेरे लिए निमित्त बना, क्योंकि लौकिक में आपका कर्म का हिसाब किताब चुप्त तो नहीं होगा। तो कोई ना कोई इसके संस्कार या कुछ ट्रिगर है जिसके कारण अंदर से कुछ उभरा होता है। अभी उस समय जब हम दुख महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको दोषी बनाते हैं, करेक्ट? दोषी बनाते हैं, पर दोष में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके नाम रूप में फंस जाते हैं। लेकिन उस समय ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि शायद ये एक मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप्त हो रहा है। थैंक यू, अच्छा है कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा मिली है मुझे मदद करने के लिए इस बात में, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि मैंने कुछ विकर्म किया ही नहीं है 63 जन्म में। आपने क्या बोला है, क्या किया है, क्या रॉन्ग किया है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए दुख को हम दुख के रूप में न लेवे, स्वीकार करना है, सहन करना है, सजा खानी है, फुल स्टॉप। थैंक यू, हो गया। और वंडरफुल है कि जो ब्राह्मण आत्मा है उसको पता भी नहीं है कि वो निमित्त है मेरे लिए, तो इजीली पास होता है। नहीं, लेकिन क्या होता है कभी कभी, बस बड़ों के पास जाते, इसने ऐसे कुछ बोला, उसने ऐसे, हम वर्णन करते हैं, उसी समय हमने दूसरा हिसाब किताब शुरू किया। ये यज्ञ है, यज्ञ में बाबा परिवार रचा है नाम मात्र के लिए, ताकि एक हम देवी देवी गुण के आधार से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस फील्ड है हमारे लिए, लेकिन कर्म के हिसाब किताब चुप्त करने के लिए भी मैदान है, ये फील्ड है। तो ये संबंध संपर्क से। तीसरा है कि जो कर्म के हिसाब किताब चुप्त होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा, तो ये तीन बातें बाबा ने बताई, बीमारी, इविल स्पिरिट से संबंध संपर्क से दुख, या नेचुरल कैलेमिटीज से। अभी ये भी बात सीक्रेट बाबा ने बताई थी कि देखो कई कर्म के हिसाब किताब धर्मराजपुरी में नहीं सेटल होंगे, यहां इस साकार दुनिया में होंगे। संबंध संपर्क में तो यहां होना चाहिए ना, इसीलिए फैमिली में आना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं बस मैं अकेली बैठी हूं, अकेला बैठा हूं, मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा, करो, बोझा लेके बैठे हैं। जब तक आप फैमिली में नहीं आएंगे, संबंध संपर्क में नहीं आएंगे, तो चुप तो कैसे होगा, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये दो चीजें, जैसे नेचुरल कैलेमिटी, संबंध संपर्क, वो इस साकार दुनिया में चुप तो होगा। बाकी जो मन चित्त की बात है वो तो धर्मराजपुरी में। बाबा ने एक बात बताई थी कि वर्तमान समय आप अपने संकल्प पे कंट्रोल नहीं ले आते, और संकल्पों का विस्तार में चले जाते हो तो इस विस्तार को आपको बाद में अंतिम समय में भोगना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो चित्त में भरी हुई अभी तक बातें हैं वो आपको धर्मराजपुरी में उसका भी भोगना पड़ेगा। समझ में आई? ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, और जो निर्णय आपने श्रीमत अनुसार नहीं लिए हैं, ज्ञान होते हुए भी आपने उल्टा निर्णय लिया है, उसका भी भोगना पड़ेगा आपको धर्मराजपुरी में। तो बाबा ने ये बहुत जोर से अंडरलाइन किया कि सभी के पुराने हिसाब किताब अब भी चुकतू होना ही है। जो भी कारण बने, कोई भी कारण बने, कोई चीज वस्तु परिस्थिति कुछ भी कारण बने, चुकतू होना। तो ये जो मशीनरी है हिसाब किताब चुकतू होने की, वो बहुत फास्ट गति से चल रही है। तो इसीलिए प्रश्न नहीं उठना चाहिए ये क्यों हो रहा है, कि क्यों इसी आत्मा नहीं। ऐसे तो हम ब्राह्मण आत्माएं बहुत भाग्यशाली है, परिवार है, आप लोग अकेले नहीं हो। इसलिए संगठित रूप में जो योग होता है वो बहुत कुछ चुकतू कर लेता है। योग में ही ओम शांति हो, संगठित रूप का योग। मुझे याद है हमारे एक कपल थे, वो दोनों ने शरीर छोड़ दिया। बहुत मशहूर कपल थे आइसलैंड के। बहन को कैंसर हुआ था, वो निमित्त बने थे आइसलैंड की सेवा शुरू करने के लिए। वो जो नॉर्थ पोल के नीचे आइसलैंड होता है ना, बहुत छोटा सा देश है, और वहां पे उनका जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो जैसे घरेलू है। उसको आप उसको बुकशॉप में मिलेंगे, जिम में मिलेंगे, और पॉपुलेशन बहुत कम है वहां की। लेकिन ये जो कपल, यहां इन्होंने ज्ञान यहां ही लिया था, हमने उनको कोर्स कराया था, पहले 3 लेसन का कोर्स इनको यहां ही कराया था मधुबन में। आए थे टूर में थे इंडिया पे, तो फिर आइसलैंड जाकर के इन्होंने शुरू किया। और एक बारी जब वापस मधुबन आए तो दादी ने उनको बुलाया स्टेज पे कि आप अपना अनुभव सुनाओ कि कैसे आपने सेवा की वृद्धि पाई है। तो उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया कि हम दोनों और पूरे आइसलैंड की फैमिली, हम पक्का करते हैं कि सवेरे का योग 6 से 6:30 बजे हम साथ में करते हैं। और हमने देखा कि हमारे परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, ये जो चूचा होता है ना, वो नहीं है। बहुत इजी सरल रूप से कार्य चलता है। एक ने सोचा, दूसरे ने किया, तीसरे ने सोचा, संकल्प किया, चौथे ने किया। क्यों? क्योंकि हम संगठित रूप में योग करते हैं, तो इस योग में बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे आपस में भी, क्योंकि हम आपस में योग बहुत करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ सेटल हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार संगठित रूप में योग करना बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर के आपको शक्ति मिलेगी जो एक दक से कर्म के हिसाब के तब चुप्त हो सकते। तो बाबा ने यह भी बताया था कि चेक करो, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैंने अपने विकर्म का बोझा तीव्र पुरुषार्थ से खत्म किया है या अभी भी कुछ बाकी है। और जब कुछ बाकी होता है बोझ, उसकी निशानी क्या होती है? विकर्म का सूक्ष्म अंश भी बाकी है, उसका उसकी निशानी क्या है? हाँ, उदासी, खुशी नहीं रहती है, और भारीपन, और योग तो नहीं लगता। कभी कभी लगेगा, कभी कभी नहीं लगेगा, कोई धक्का मारेगा तब लगेगा। हाँ, अच्छा, बाबा ने ये बताई, 2 बातें बताई कि आपके संस्कार स्वभाव अपने श्रेष्ठ परिवर्तन या श्रेष्ठ कर्मों में एक विघ्न बनता है, वो आप अनुभव करेंगे। ये एक निशानी है कि आपके पुराना स्वभाव संस्कार आपकी श्रेष्ठ परिवर्तन में और श्रेष्ठ कर्मों करने के लिए एक विघ्न बनता है। और फिर बोल से क्या निकलता है, पता नहीं कैसे हो गया, मैं चाहती तो नहीं थी लेकिन हो गया, मैंने ऐसे संकल्प तो नहीं किया लेकिन क्या हुआ, बोल गए, जैसे मजबूरी के बोल, मजबूरी की महसूसता होती है। और दूसरी बात कि भल उमंग उत्साह साहस भी रहेगा लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग आएंगी कि कुछ प्रभाव के नीचे है, कुछ प्रभाव है, चाहे संग दोष का प्रभाव, चाहे संस्कार स्वभाव का प्रभाव, चाहे वातावरण वाइब्रेशन का प्रभाव। इसीलिए करना चाहते हैं लेकिन लेकिन नहीं करना पड़ता। नहीं, आपने अनुभव किया होगा ना कि पुरुषार्थ में कितने सारे प्रतिज्ञा, हाँ मुझे ये करना है, एक दिन मुरली सुनते हाँ करेंगे, एक दिन होता है बाद में छूट जाता है, होता है ना, क्यों, पुराना स्वभाव संस्कार का बहुत जबरदस्त पकड़ाव है, प्रभाव है इसका, या कुछ संग दोष में गड़बड़ी है, कंपनी में गड़बड़ी है, या वातावरण वाइब्रेशन का प्रभाव है। तो बाबा ने बताया है कि ये सब निशानियां है कि एक विकर्मों का बोझा रहा है, और जब ये विकर्मों का बोझा से मुक्त हो जाते हैं तो उसकी निशानी क्या है, हल्कापन, और स्थिति क्या बनती है, फ्लाइंग स्टेज, उड़ती कला, उड़ती कला। इसीलिए जो बाबा ने वाणी चलाई थी अभी, उड़ती कला में रहना है तो फुल स्टॉप में ही रहना पड़ेगा। जो अष्ट रतन है वो अष्ट रतन क्यों बनते हैं, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर, और ये पुरुषार्थ में मास्टरी है, फुल स्टॉप की पुरुषार्थ में वो खुद ही फुल स्टॉप है, आप देखेंगे। इसलिए अष्ट रतनों की अंगूठी पहनते हैं, वो पहनते हैं जब विघ्न आते, क्यों, विघ्न को समाप्ति करने के लिए। तो इसीलिए मैंने दादी में बहुत बारी प्रैक्टिकल रूप में हमने देखा है कि दादी के सामने, आप देखो भारत में पवित्रता के लिए मान है, भगवान के लिए मान है, बहनों को यहां तो देविया के माफिक देखते हैं, ठीक है, विदेश में तो पवित्रता के लिए मान नहीं है ना भगवान के लिए मान है, हमको तो देवी ही नहीं समझते हैं, वो तो भानी नहीं है। पता है दादी ने पहले पहले तो जानकी जानकी कहते थे, फिर हम दादी है, दादी को दादी बोलो, और दीदी है ना डॉक्टर निर्मला, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गई ना तो किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे दीदी बुलाओ क्योंकि उनको पता था वो नाम बताएंगी तो विदेशियों का यही आदत होता है ना, फर्स्ट नेम से बुला लेते हैं, निर्मला निर्मला करते रहेंगे तो इसीलिए दीदी ने बहुत वेरी गुड युक्ति रची, मुझे दीदी बुलाओ, तो आज दिन तक वही नाम रखा, बस ये दीदी है, समझ में नहीं आती दीदी की परिभाषा क्या है लेकिन ये दीदी। तो अभी आप सोचो ऐसे कल्चर में जो खुद का स्वमान नहीं है, सामने वालों का मान नहीं है, कितना सुनना पड़ता है, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और यहां भारत में जैसे मानने की वो है ना एक्सेप्टेंस, हाँ ठीक है करेंगे देखेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहां ऐसा नहीं होता है, वहां नो मींस नो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, सीधा मुंह में बोल देते हैं। अभी दादी के सामने इतने ऐसे आए, हमने आंखों से देखा है रिजेक्शन करने, हमने तो देखा है दादी ने जहर पिया है, सच में मैं बोलूं, लेकिन मर्ज कर दिया है बाबा की याद में, उसको खत्म कर दिया, कभी भी अपनी वृत्ति को किसी के प्रति बदली नहीं की है, अपनी गुड विशेस को नहीं छोड़ा है। एक भाई था हमारा, जर्नलिस्ट भाई है, पुराना भाई है हमारा लंदन का। तो ऑलवेज वो दादी का इंटरव्यू लेता था, ऑलवेज वो कंप्लेन करता था कि दादी आप मेरे प्रश्नों का जवाब देते ही नहीं हो, आप अपनी ही बातें करते हो, भगवान की बातें करते हो। तो एक बारी हमने ऑक्सफोर्ड में बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था, तो वो स्टेज पे था और दूसरा गेस्ट भी था दादी के साथ। तो वो इंटरव्यू ले रहा था, दादी तो प्रश्नों का जवाब दे रही थी लेकिन दूसरे ढंग से दे रही थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था, तो बहुत नाराज हो गया। तो लास्ट में आया, फिर सवेरे ऑक्सफोर्ड से लंदन आया अमृत वेले के लिए, बहुत गुस्से में था। तब दादी मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि आपने ऐसा किया, क्यों किया। कहते हैं मुझे ऐसे लगा है कि चाकू लगा है दिल में। तो दादी ने उसको दृष्टि दिया, ये अमृत वेले के बाद दादी ने उसको दृष्टि दिया, चाकू लगा है, अच्छा निकाल दो, निकाल दो, बस निकाल दो। और फिर दादी ने उसको बहुत प्यार से समझाया, भाई तुमने इतना अच्छा कार्य किया है कल रात को, सभी को इतना फायदा मिला उस प्रोग्राम से, अभी तुम्हारी स्थिति डगमग में होंगी तो इनकी हालत क्या होंगी, थोड़ा सा भी जो प्राप्ति लिया हुआ होगा प्रोग्राम से वो भी गायब हो जाएगा। इसीलिए जो निमित्त होते हैं उनको अपनी स्थिति का ख्याल रखना पड़ता। You understand? ऐसे नहीं कि अच्छा प्रोग्राम करके फिर अपनी स्थिति को डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि फिर जिसके लिए आप निमित्त बने हो, जिसको प्राप्ति मिली है, वो भी प्राप्ति डस्टबिन में हो जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। ये भी एक बहुत गुह्य कर्मों का राज है, इसीलिए बहुत केयरफुल रहना है हमको। तो उसने फिर उस समय जब दादी ने बोला ये निकाल दो ना, क्या बड़ी बात है, तो ये एक सेकंड में पता नहीं क्या दिमाग में उसका परिवर्तन हो गया, तो पेन चला गया। ये दादियों में ऐसी शक्ति होती है, सीधा बोल देती है, ऐसे थोड़ी बकरी बहम के सॉरी मैंने आपको दुख दिया सॉरी, सीधी थी दादी। जितना वो सामने से सीधा बोलते थे, सामने से दादी सीधा जवाब भी देती थी, लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस होते थे, बहनों की बात, अंदर अंदर फैमिली की बात है। एक बारी हम दादी के कमरे में गए थे, तो एक बहन थी बहुत गुस्सा कर रही थी दादी के सामने। मैं तो दरवाजा के पास ही ठहर गई, अंदर नहीं गई, मैंने खोला मैं वहां ही रुक गई। अब मैंने देखा इतना जोर जोर से बोल रही थी दादी, बस उसको शांति से दृष्टि दे रही थी, कुछ नहीं जवाब दिया, उसको मनाने की कोशिश नहीं किया, कुछ नहीं किया। 3-4 मिनट पास हुए, गरम गरम होकर के शांत अपने आप हो गए दादी। फिर 30 सेकंड के लिए यू टर्न किया, बाथरूम में गई, वापस आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, टोटल वातावरण बदला 1 सेकंड में। फिर इतना हल्के रूप से दादी ने उसको, अच्छा तुम टोली ले आ, वो करो वो करो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा ये तो मैं साक्षी होकर के देख रही थी, आश्चर्य खा रही थी कि 1 मिनट में इतना भारीपन, जैसे वो इतना जोर जोर से बोल रही है और मुझे असर हो रहा है, दादी को नहीं असर हो रहा है। और दादी बस 30 सेकंड के लिए बाथरूम में गई, वापस आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वातावरण तुरंत बदल गया। फिर उस सीन के बाद मैंने 2 वीक के लिए बहुत इंटेंस पुरुषार्थ किया, हर बात में बिंदु लगाने का। जैसे मैं किसी के साथ कुछ वार्तालाप करती थी, तुरंत उसके बाद बिंदु बना करके भूल जाती थी। कोई भी बात में चित्त को रखती नहीं थी उस समय, बहुत ध्यान रखती थी। रात के समय सोने से पहले सभी को भूल जाओ, दादी को भूलो, जयंती बहन को भूलो, माँ बाप को भूल जाओ, भूल जाओ, सो जाओ, जो भी होता था जल्दी जल्दी भूलो, समाप्त करो, भूलो समाप्त करो। और इतना जैसे फ्लाइंग स्टेज का अनुभव हुआ था उस 2 वीक में। तो बाबा यही चाहता है हमसे, लेट गो फुल स्टॉप, लेट गो फुल स्टॉप, ये मंत्र पक्का करो। ये चीजें ककपन की चीजें है, पता है, सेसमी सीड के बराबर है। समझो 2 मिनट के लिए किसी ने आपकी गिलानी की, क्या बड़ी बात है। 2 मिनट 1 घंटे में कितना है, कितना परसेंटेज है, 2% नहीं, 2% से भी कम है, 3.33. अच्छा मैथमेटिशियन हो आप क्या? अच्छा वंडरफुल. तो कितना कम परसेंटेज है. अभी 2 मिनट 24 आवर्स में कितना है? अच्छा अभी 2 मिनट 1 वीक में कितना है? 2 मिनट 1 साल में कितना है? 2 मिनट आपके जीवन में कितना है? 2 मिनट 84 जन्म में कितना है? और आप इस 2 मिनट के लिए सारी गाड़ी रुक देते हो. आप ये क्या है? नॉनसेंस है. अपने आप को समझाओ. मैं 84 जन्म वाली आत्मा हूं. मैंने 84 जन्म लिए हैं, मैंने 84 शरीर छोड़े हैं. इतनी एक्सपीरियंस है इस आत्मा में. ये छोटी बात में क्यों गाड़ी रुकती है? किसी ने मुझे देखा नहीं, किसी ने मुझे काम में अप्रिशिएट नहीं किया. कहां तक बकरी रहेंगे? यू अंडरस्टैंड? लिमिट क्या है, लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या है? तो वर्तमान समय अनुसार जो भी हमारे इस आत्मा में सब कुछ है. और ये मैं कहती हूं, जैसे दादी सुदर्शन चक्रधारी थी, इसके वजह से एक एक घड़ी में वो कभी वो स्मृति नहीं उड़ जाती थी कि मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं. तो वो अथॉरिटी से फुल स्टॉप लगाना है. कमजोरी से तो फुल स्टॉप होगा ही नहीं. कमजोरी से तो कॉमा क्वेश्चन मार्क लगेगा. तो इसीलिए अपने आप को बहुत रियलिटी से समझाना है, मैं कौन सी आत्मा हूं. और ये आप जाएंगे ना हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, बाबा के कमरे में बैठे, अंदर जाओ, मैं 84 जन्म लेने वाली एक आत्मा हूं. क्या नहीं किया है मुझे बताओ. तो इस जन्म में डर क्यों? किस बात का डर? नाम रूप का. आप खुद अपने नाम रूप में फंसे हो, औरों के नाम रूप में फंसे हो, लोकलाज में फंसे हो. हमने एक बारी दादी को पूछा था कि दादी, दादियों में इतनी शक्ति हिम्मत कहां से आती है? दादी ने क्या जवाब दिया? लोकलाज को तोड़ा है. रियली लोकलाज को तोड़ा है. और अभी 99.9% ब्राह्मण लोकलाज में फंसे हैं. इसीलिए तन मन धन बर्बाद हो रहा है. मैं आपको बताऊं, मोस्ट कार्मिक अकाउंट्स पैसे द्वारा होता है फैमिलीज में. क्यों? ये मेरा पोतरा है, दोतरा है, मेरी बेटी है, वो है, मैं कुछ इसके लिए रखूं, वो करूं, वो करूं. मनी का एक्सचेंज होता है. आपको खुद पता नहीं होता है वो पैसा कहां यूज होता है. उसका फिर आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने श्रीमत अनुसार उस धन को सही रूप से यूटिलाइज नहीं किया है. पता है, श्रीमत ऐसी चीज है जो इसका पर्पस ही है आत्मा को मुक्त करना, आत्मा को लिबरेट करना, आत्मा को श्रेष्ठ बनाना. मैं आपको 2-3 ऐसे उदाहरण देती हूं. हमारा जो विश्व में चक्कर चलता है, तो ग्रीस में गई थी बहुत समय में, बहुत समय के लिए. वहां का निमित भाई एनसी था, इसको हार्ट अटैक हो गया था और सारा देश दिवाला हो गया था. बहुत खराब हालत थी ग्रीस में 10 साल पहले. और हम जब सेंटर में पहुंचे ना, तो मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में 1 टमाटो 1/2 कैबेज, कुछ भी खाना नहीं था घर में. और बहुत बुरी हालत थी सेंटर की. तो फिर हम बैठे थोड़े समय के लिए और मैं देख रही थी क्लास में. क्लास में बहुत रॉयल लोग बैठे थे, ऊंची ऊंची पोजीशन वाले. एक जज था, एक लॉयर था, एक अकाउंटेंट था. मींस अच्छे प्रोफेशनल्स थे. कई लोगों के पास जॉब नहीं था और ऑलमोस्ट एवरीवन के ऊपर कर्जा था, डेट, कुछ ना कुछ प्रकार का डेट था, जैसे नॉर्मल है उनके लिए. और हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं है. बाबा ने बताया है ना, कर्जा नहीं उठाना है, इट्स नॉट श्रीमत। तो मैंने एक बारी सभी को बोला, अच्छा जिसको भी श्रीमत चाहिए धन के बारे में आप हाथ ऊंचा करो, मैं आपको टाइम दूंगी। तो क्लास में से 10 लोग हाथ उठा किया, तो फिर तो उस समय 10 लोगों ने हाथ ऊंचा किया, तो हर एक के साथ में बैठी। हाँ, मैंने सारा पूछा, क्योंकि धन क्या होता है, धन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है, केवल अकाउंट में, फिर उनका एक्सपेंडिचर इनकम सारा सब कुछ देखना है ना, आपका नाम कहाँ फंसा हुआ है, किसी प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है या आपको पता नहीं है, या आपके नाम से कुछ किसी ने ट्रस्ट बना दिया है आपके फैमिली में, आपको पता नहीं है वो पैसा कौन ले रहा है, कुछ भी आपके नाम से है आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसे अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए उस समय। तो वो क्या होता है, फिर मैंने पूछा इनको, आपका इनकम एक्सपेंडिचर का शीट बनाओ। तो हरेक ने बनाया और देखा कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत है, इनकम कम है। तो मैंने फिर इनको बताया, देखो कैलकुलेशन किया, क्योंकि बड़ी दादी ने हमको बहुत समय पहले एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, नहीं आपके जो इनकम होता है उसमें से 50% आप खुद के लिए रखो, फिर 50% जो भी आपको बिल पे करना है, सेंटर का जो करना है वो करो, पर 50% में 25% इमरजेंसी सेविंग्स और उस और 25% को आपको जो अपने पर्सनल के लिए चाहिए, और उसमें से फिर एक 10% भी मधुबन के लिए ऐसा। लेकिन ये तो उस समय की बात। तो वो फॉर्मूला लेकर के हमने हर एक का इनकम को कैलकुलेशन करा करके बताया, चलो आप लोग बाबा के बॉक्स में इतना डाल सकते हो वीक में। कोई एक व्यक्ति 7 यूरो डालता था, कोई एक व्यक्ति 10 यूरो डालती थी, ऐसा करके कैलकुलेशन बनाए। मैंने बोला आपको हर वीक इतना डालना है, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन करके, और फिर आपको अपना हिसाब किताब का चार्ट रखना है और मुझे हर मास भेजना है, ठीक है। तो 3 बहनों ने ये उठाया था लगन से, दिल से। तो आप मानो नहीं, एक बहन 1.5 मास के बाद मुझे फोन करती है, इतनी खुश है। मैं बोला क्या हुआ, कहती है मेरा बैंक के साथ बहुत बड़ा कर्जा था, 5,000 यूरो का कर्जा था, लेकिन मैं हर वीक, सच में मुझे लगा है कि श्रीमत को पालन करके बाबा ने मुझे छुट्टी किया। आज बैंक का फोन आया, उन्होंने कर्जा 1,000 तक ही कैप कर दिया है, और ये 1,000 में 1 मास में ही पूरा कर सकती हूं। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूं बाबा को, आपको, कि मैंने श्रीमत लिया है और जो बाबा के बॉक्स में 10 यूरो डालती थी हर वीक, इसका ये फायदा है। देखो उसी समय वो सोचती कि मैं कैसे डालू 10 यूरो, मेरा कर्जा है, मैं कैसे डालू, तो कहां होती वो, कर्जा भी ना चुक तो होता, और वो भी अपना भाग्य भी नहीं बनाती। लेकिन हिम्मत करके, बेल्ट टाइट करके, उसने अपने एक्सपेंडिचर को बिल्कुल सिंपल बना दिया, और देखो 1.5 मास के अंदर ये ऑटोमेटिक मशीनरी है श्रीमत की। दूसरी बहन ने जो 7 यूरो डालती थी ना हर वीक, उसको 3 मास के बाद प्रमोशन मिला, और वो भी 700 यूरो एडिशनल बोनस मिला। इतनी खुश हो गई कि जो पहला बोनस उसको मिला 700 यूरो का, उस सीधा सेंटर पे आई, कहते ये बाबा का है, ये बाबा ने, बाबा की श्रीमत ने दिलवाई है ये। अभी आप देखो श्रीमत का लक्ष्य क्या है, श्रीमत का पर्पस क्या है। हम श्रीमत को साइड में रख करके लोक लाज में फंसे हैं, धन को व्यर्थ में गंवाते हैं, फालतू चीजों में, क्यों? क्योंकि समाज में हमारा शो होना चाहिए। कौन भोगेगा इसका? आप ही भोगेंगे। फिर कंप्लेन कैसी आएंगी, मेरा योग नहीं लगता है, क्या करे बहन जी, वो ऐसे ऐसे भोगना पड़ता है। जो जिसका आपका व्यर्थ जाता है ना, व्यर्थ का बोझा आत्मा में अक्यूमुलेट होता है, और वो बोझा आपके शरीर का बैलेंस को असर करता है। तब जाकर के आपको छोटी छोटी बातों में भोगना पड़ेगा। एक दिन उठेंगे ब्लड प्रेशर ऊपर, एक दिन वो चक्कर लगता है, ठीक नहीं लगता है अंदर से, ये वेस्टेज का भोगना। इसीलिए बहुत ही दृढ़ संकल्प वफादारी होकर के संभालो, लोक लाज के हिसाब से नहीं चलना है, तोड़ना है इसको, तब जाकर के आपको बाबा की शक्ति मिलेंगी और आप अपने सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये गारंटी है, श्रीमत की गारंटी है, बाबा की गारंटी है, लेकिन हिम्मत चाहिए। आप बाबा के सामने एक्सक्यूज देते हो, नहीं बाबा मेरी बेटी की शादी है या मुझे यहां पे जाना है तो करना पड़ता है ना, ठीक है। बाबा क्या बोलेगा? आप जानो, आपकी गति जाने, बस डिटैच्ड हो जाता है बाबा। लेकिन आपने हिम्मत करके श्रीमत पे चले, बाबा रिस्पॉन्सिबल है, बाबा आपका सब कुछ देखेगा। मुझे याद एक सिंधी कपल आए थे शुरू शुरू में, ज्ञान में क्या 89 नहीं अर्ली 90s में निकले थे लंदन से, बहुत मुश्किल से सिंधी लोग निकलते हैं वहां से। तो ये जो हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ थी तो उनकी बहुत सोशल सर्कल तो बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो वो वाइफ तो बहुत तुरंत, जैसे उसको रातों रात ही परिवर्तन हो गई, खान पान में सब कुछ, ड्रेस भी सिंपल कर दिया, बहुत अच्छे खानदान वाले थे, पैसे वाले भी बहुत थे। तो हमारे साथ वो दादी ने एक बार, हम टूर पे गए थे दादी के साथ हांगकांग, वहाँ फिलीपींस, न्यूजीलैंड, तो नहीं हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दादी ने इस बहन को हमारे साथ लेके आई थी, इसको कंपनी मिले आपकी, तो हम लेके आए थे साथ में टूर पे। तो हांगकांग तक तो चली, तो उसने मुझे हांगकांग में स्टोरी बताई थी कि एक बारी वो दोनों लगन में गए थे, किसी की शादी हो रही थी, तो वहां पे तो उनका खान पान ऐसा होता है और उनके जो भी रिश्तेदार है वो तो बहुत मड़े बड़े मजे से, और वो एक्सपेक्ट करते थे ये दोनों बैठेंगे। तो वो तो गई बाथरूम में, थोड़ा एक्सक्यूज बना करके बाथरूम में गई, और बाथरूम में बाबा को बहुत जोर से याद किया कि बाबा मुझे ये नहीं खाना है, मुझे कुछ बचाओ, मुझे कुछ युक्ति रचो, मुझे इस खाना नहीं खाना है, मुझे अपनी श्रीमत, ये श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। तो अंदर जैसे उसको फीलिंग आई, ठीक हो जाएगा, तुम बाहर जाओ, बैठ जाओ टेबल पे। तो जैसे टेबल पे बैठे और वो पिरोसने शुरू किया, उसका जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने सामने से बोल दिया, नहीं नहीं इसका है ना थोड़ा पेट का ट्रबल है, वो नहीं खाएंगी, इसको बस थोड़ा वो जूस पिला दो और वो थोड़ा फ्रूट बूट खिला दो, बाकी और कुछ नहीं खाएगी, मुक्ति। उसको कुछ बोलना ना पड़ा। मैं क्यों कहती हूं, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, वो संकल्प में हार खाती तो कर्म में भी हार खाती। संकल्प में उसने हिम्मत रखी बाबा के पास जाने के लिए, लोक लाज तोड़ा ना, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, बाबा के पास गए, सोल्यूशन निकला। अभी नाउ इज योर चॉइस, आप क्या करेंगे। अभी समय इतना फास्ट जा रहा है, शुरू से यज्ञ के शुरू में मन तन धन स्वाहा हुआ यज्ञ को बढ़ाने के लिए, फिर सेवा की वृद्धि में मन वाणी कर्म की वृद्धि हो, अभी समय संकल्प श्वास को सफल करना है, जो भी है सफल करना है, कुछ निष्फल नहीं होना चाहिए। जब ग्रीस की बात आती है, एक बहन थी जो पूरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बिजनेस थी उसकी, उसकी एक बिल्डिंग थी, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। और मैंने देखा कि वो मुझे बता रही थी, क्योंकि उसने बहुत बाबा की सहयोगी है, और उसमें से जब इस सेंटर को दिक्कत होती थी तो फ्लैट देती थी, ब्राह्मणों जब आते थे तो 2-3 फ्लैट देती, सेवा में लगाती थी वो, अब कभी कुछ खाली नहीं रखती थी उस बिल्डिंग में, कोई किसी के पास कोई इनफ पैसे नहीं था रेंट के लिए, तो कम रेंट में दे करके वो दे देती थी, मतलब बहुत बड़े दिल से, लेकिन सब कुछ सफल करती थी। तो उसका नतीजा क्या है कि जब देश का दिवाला हुआ ना, तो उसको नुकसान नहीं हुआ। और जो उसका फ्रेंड था, एक भाई था, एक इतना वो क्या कहते हैं माइजर को क्या कहते हैं हिंदी में, कंजूस था। हाँ, वो रेंट बढ़ाता था दिवाले में, उसका तो पूरा ही नुकसान गया, पूरा गवर्नमेंट बैंक ने ही पूरी बिल्डिंग सीज कर दी। जो चीज आप सफल नहीं करेंगे वो आपके हाथ से चली जाएंगी, ये आप अभी अंडरलाइन कर दो। और हम इतने भाग्यशाली हैं, जो मैं क्या कहती हूं कि बाबा ने खुद हमको इतना वंडरफुल चांस दिया है कि बाबा के साथ कर्म का हिसाब किताब जुड़वाना, सब कुछ बाबा के नाम से सफल करना, माना हमको 84 जन्म के लिए, छोड़ो 21 जन्म के, 84 जन्म के लिए हमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए खाना कहां से आएगा, कहां रहेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए देखो लास्ट समय में आप लोग कितने खुश राजी बैठे हो, आपने सही रूप से सफल किया है वो याद करो, और जो भी वेस्टेज है उसको खत्म करो, क्योंकि बहुत जबरदस्त फिर भोगना पड़ेगा। ठीक है, और तो इसकी परिभाषा बहुत है, लेकिन मैं गाड़ी को यहां रोकती हूं, क्योंकि 7:10 हो गए हैं, योग का समय है। अभी अंदर से फुल स्टॉप। जी नहीं, हमारी ये तो याद आता है क्लास के समय, जो अच्छी अच्छी बात है जो सीखने को मिलता है वो तो याद आता है ना, जो फालतू की बात है वो याद नहीं आती। लेकिन ये जैसे टॉपिक के अनुसार जो उदाहरण होते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, वो तो याद आएगा ना। तो वो तो मुझे भूलता, क्योंकि ये श्रीमत के साथ जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसका नतीजा है ये सारा। नहीं, दादी ने, या देखो ये भी दूसरी सीक्रेट है दादी की, दादी ने किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं किया है। दादी हमारा जो, हमको भी नहीं पता था हमारे पार्ट में क्या है। देखो दादी जब पहुंचे लंदन में, दादी को भी पता नहीं था उसके पार्ट में क्या है। दादी को किसने बोला कि हाँ आप दादी बनेंगे, इतना ग्लोबल कॉपरेशन हाउस बनेगा, फिर ऑक्सफोर्ड आएगा, फिर विदेश की वृद्धि, कुछ पता नहीं था। दादी ने अपना पार्ट जागृत किया है एक ही चीज से, भगवान के साथ सच्चा और गहरा वार्तालाप करने से, अमृत वेले के समय। वो सवेरे के समय बाबा को बोलती थी, बाबा मैं अवेलेबल हूं, जो चाहिए आपको मैं अवेलेबल हूं, खुले दिल से अवेलेबल हूं। आजकल तो किसी के पास ऐसा हिम्मत है बोलने के लिए, मैं फुली अवेलेबल हूं, जो कुछ आप बोले, बर्तन मांजो तो भी अवेलेबल हूं, भाषण करो तो भी अवेलेबल हूं। अभी तो अवेलेबिलिटी में कंडीशन डालते हैं, मुझे इस प्रकार की सेवा करनी है, इस प्रकार की नहीं करनी है। जब तक, मैं आपको ये भी बात बताऊंगी, जब तक आपने हड्डी नहीं दी है बाबा को, तब तक देह भान नहीं छूटता है, बाबा की याद नहीं रहती है, सब कुछ देना पड़ता है। तो मैंने देखा ये चीज दादी में है, और दादी ने हमारे पार्ट में इंटरफियर नहीं किया। हां, जब जरूरी थी तो भेजा, और दादी को साइलेंस में बैठ करके उसको टचिंग आती थी, देखती थी। ऐसे नहीं कि बस अभी गोपी को कहां भेजू, ये ऐसे नहीं सोचती थी, ड्रामा अनुसार जो नेचुरल होता था उस अनुसार चलती। और ये तो पार्ट खुला, नेचुरल पार्ट खुला ये तो। और फिर दादी अपने तरफ से भी एक दो बारी जैसे बोलती थी, बहुत डिफिकल्ट केसेस होते थे तो वहां भेजती थी। मैंने देखा दादी की शक्ति इतनी यूज काम करती है। हम निर्संकल्प बन जाते हैं ना तो बाबा की शक्ति और हमारे पूर्वज की शक्ति काम करती है। आप बीच में ज्यादातर संकल्प चलाते हैं ना तो आप खुद अपने पार्ट में इंटर, और आपको अपनी पार्ट की महसूसता नहीं होगी और स्पेशलिटी भी नहीं दिखाई देंगी। हाँ जी माना यहां से चुप, हाँ जी हाँ। तो ड्रामा अनुसार ये है, तो हम भी नहीं सोचते हैं। नहीं, बेहद की सेवा मिली है। हम तो सेंटर खोलते हैं, सेंटर बंद करते हैं। वही है। क्या बाहर सेवा? अभी विदेश की हालत देखी है, बहुत डिफिकल्ट है। भारत में जो आपको है अभी, अभी यहां पे, और सेवा बहुत प्रकार से होती है। देखो, कर्म सेवा, बोल सेवा और मनसा सेवा, तीन अकाउंट है सेवा के। और जो आपका पार्ट में है वो आएगा, जो आपके भाग्य में है वो आएगा, आएगा। बट लेकिन दिल से अमृत वेले के समय बाबा के साथ वार्तालाप होना चाहिए, दिल से। तब जाकर के बाबा अपना, आपका भाग्य खुलता है। ओके, ओम शांति शांति शांति। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाबा का ज्ञान है।
ओम शांति। दीदी, आपने कार्मिक सेटलमेंट हमें बता के और हमें थोड़ा हल्का किया कि हमें ही भुगतना है और इधर ही करना है तो कर सकते हैं। आपके लिए हमने दो चार लाइनें लिखी हैं आपके आभार में। हे नजीरे नज्म अव्वल, तुम वैदेही की करामात हो। दादी जान की। हे नजीरे नज्म अव्वल, तुम वैदेही की करामात हो, तुम पसंद परवरदिगार की, तुम उस्ताद की पहचान हो। दादी जानकी की। तुम पसंद परवरदिगार की, तुम उस्ताद की पहचान हो, तुम गोपी गोपी बल्लभ की, तुम गोपी गोपी बल्लभ की और आफ्ताब का वरदान हो, तुम मसाल हो आध्यात्म की, तुम मसाल हो आध्यात्म की और युवा जगत की शान हो, और युवा जगत की शान हो। तुमने लिखी अपनी कहानी, तुमने लिखी अपनी कहानी, लेखनी ले जग कल्याण की, तुमने पढ़ाई जग को रूहानी, तुमने पढ़ाई जग को रूहानी दास्तान शिव भगवान की। तुम वक्त की दहलीज पर भटकते मन की पतवार हो, तुम वक्त की दहलीज पर भटकते मन की पतवार हो, तुम नियत की तहजीब पर, तुम नियत की तहजीब पर महकते गुलशन की बहार हो। लंदन यज्ञ। तुम रफ्तार हो पुरुषार्थ की, तुम रफ्तार हो पुरुषार्थ की ऑक्सफोर्ड की मस्त फिजाओं की, तुम विस्तार हो परमार्थ का, तुम विस्तार हो परमार्थ का युवाओं की समस्त विधाओं की। तुमने अपने निर्मल चरित्र पर परवरदिगार का रंग भरा, तुमने अपने निर्मल चरित्र पर परवरदिगार का रंग भरा, आज हमारे दिल के परवाजों में, आज हमारे दिल के परवाजों में कार्मिक सेटलमेंट का उमंग भरा, कार्मिक सेटलमेंट का उमंग भरा। हर शख्स को पढ़ने का अभिलाषी, हर शख्स को पढ़ने का अभिलाषी है जीवन के जो तुमने अध्याय लिखे, हर शख्स को पढ़ने का अभिलाषी है जीवन के जो तुमने अध्याय लिखे। सबको प्रभु का रंग लगे, सबको प्रभु का रंग लगे, निर्मल जीवन का पर्याय गढ़े, निर्मल जीवन का वो पर्याय गढ़े। हे युवा जगत के उत्तम प्रहरी, हे युवा जगत के उत्तम प्रहरी, तुम बेजोड़ रूहानी सेनानी, हे युवा जगत के उत्तम प्रहरी, तुम बेजोड़ रूहानी सेनानी। करते हम सब अभिनंदन, करते हम सब अभिनंदन, मेरी सच्ची गोपी मस्तानी, मेरी सच्ची गोपी मस्तानी। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।